पृष्ठ संख्या 175, अध्याय 14, इतिहास में प्रगति की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेस इन हिस्ट्री। समाज की विकासात्मक व्याख्या को प्रगति कहते हैं। प्रगति एक अमूर्त संज्ञा है। मानव जाति जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, उसकी प्राप्ति इतिहास के बाहर नहीं अपितु इतिहास के परिप्रेक्ष्य में ही संभव है। लेन पूल का अभिमत है कि इतिहास सदैव निरंतरता की विधि है। इसके अंतर्गत किसी विचार अथवा घटना का आरंभ नवीन नहीं होता। प्रत्येक युग अतीत के भार से बोझिल रहता है। वर्तमान का आविर्भाव अतीत के गर्भ से हुआ है, अतः अतीत वर्तमान का जनक है। अतीत के अंतराल में निहित अनेक विचारों के अणु तत्वों का विकास वर्तमान तथा भविष्य में होता है। इन अणु तत्वों की विकासात्मक प्रक्रिया प्रगति का संकेतक है। अतीत वर्तमान अथवा भविष्य एक ही कालांतराल की श्रृंखलाएं हैं। प्रत्येक इतिहासकार अतीत की परंपरा को वर्तमान तथा भविष्य में परिप्रेक्षित करता है। प्रगति की इस अवधारणा को एक्टिन ने वैज्ञानिक अवधारणा की संज्ञा दी है, जिसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। भावी पीढ़ी के प्रति कर्तव्य का सिद्धांत प्रगति की अवधारणा का स्वाभाविक परिणाम होता है। प्रायः प्रगति शब्द का प्रयोग मनुष्य दैनिक जीवन में करता है, परंतु प्रगति का विशेष अर्थान्वेषण 19वीं सदी की देन है। दार्शनिक इतिहासकारों ने इस शब्द की विस्तृत व्याख्या की है। प्रकृति तथा मनुष्य दोनों का इतिहास होता है। प्रकृति में प्रगति नहीं अपितु विकास होता है। प्रगति का मानदंड समाज होता है। समाज पशु पक्षियों का भी होता है, परंतु पशु पक्षियों के समाज का संबंध प्रगति से नहीं है, क्योंकि पशु पक्षी में विशिष्ट मस्तिष्क नहीं होता है जो प्रगति में सहायक हो सके। कोंदोर्से का अभिमत है कि प्रगति मानवीय मस्तिष्क की प्रक्रिया से उद्भूत होती है। इसका स्वरूप व्यक्तिगत होते हुए भी सामाजिक है, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक परंपराओं को विकसित करता है। सामाजिक व्यक्तियों का योगदान प्रगति में होता है। इस प्रकार लघु समाज से राष्ट्र, विश्व तथा संपूर्ण मानवीय समाज में प्रकृति ढूंढी जा सकती है। इतिहासकारों ने यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका के सामाजिक परिवेश में प्रगति के अर्थ को समझने तथा प्रगति अवधारणा को स्पष्ट करने की चेष्टा की है। इतिहास में प्रगति अवधारणा का चिंतन केंद्र इंग्लैंड रहा है। ब्रिटिश इतिहासकार बटरफील्ड तथा लॉर्ड एक्टन प्रगति अवधारणा के जनक माने जाते हैं। इन विद्वानों ने ब्रिटिश साम्राज्य की निरंतरता विकास प्रक्रिया में प्रगति अवधारणा को ढूंढने का प्रयास किया है। यूरोप का एक छोटा सा राज्य 19वीं सदी के उत्तरार्ध तथा 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक यूरोपीय महाद्वीप के मानचित्र पर एक महाशक्ति बनकर प्रकट हुआ। उसका साम्राज्य सुदूर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम एशिया, अफ्रीका, महाद्वीप, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका तक विस्तृत था। अदम्य उत्साह एवं गर्व ने अनेक ब्रिटिश इतिहासकारों को यह कथोक्ति कहने के लिए विवश कर दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्यास्त कभी नहीं होता है। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश इतिहासकारों ने ब्रिटिश साम्राज्य की प्रगति के विभिन्न आयामों पर अनेक रचनाएं प्रस्तुत की। इस प्रकार प्रगति अवधारणा के उद्गम का एकमात्र श्रेय ब्रिटिश इतिहासकारों को दिया गया है। प्रगति अवधारणा का स्वरूप। प्रगति का स्वरूप एक समान नहीं रहता है। इसमें आरोह अवरोह, उत्थान पतन, विकास तथा ह्रास की अवस्थाएं होती है। डेनियल के इस तर्क में सहमति है। प्रगति में समान निरंतरता की कल्पना एक भ्रम है। 20वीं सदी में अनेक इतिहासकार बड़े गर्व से कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता है। प्राकृतिक नियमों के अनुसार उत्थान और पतन, आरोह और अवरोह ग्रेट ब्रिटेन सहस्राब्दी के अंत में उसी अवस्था में पहुंच गया जहां से वह प्रगति की सीढ़ियों पर चढ़ा था। उस समय प्रगति के इस अंत की कल्पना नहीं की गई। पुराणों में प्रलय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, परंतु संपूर्ण विनाश प्रकल्पित नहीं है। प्रथम प्रलय के बाद भी मनु और श्रद्धा से पुनः सृष्टि के चलने का उल्लेख पुराणों तथा अन्य ग्रंथों में है। सृष्टि गतिहीन नहीं है। युग चक्रवादी अवधारणा के अनुसार धर्म की अवनति तथा पतनोन्मुख परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ईश्वर का अवतार प्रगति को गति तथा शक्ति प्रदान करने के लिए ही होता है। सूर्योदय के पश्चात सूर्यास्त तथा रात्रि का आगमन धीरे धीरे होता है। प्राकृतिक नियम के अनुसार रात्रि अपना कार्य दिन को और दिन अपना कार्य रात्रि को सुपुर्द करता है। इस परिस्थिति में सांध्य वेला तथा प्रकृति की अरुणिमा काल का अपना महत्व होता है। यही प्रगति की गतिशीलता की अवस्थाएं हैं। इसी प्रकार एक युग प्रगति के दायित्व को दूसरे युग को सुपुर्द करता है। इस कार्य प्रणाली की तुलना हम रिले रेस से कर सकते हैं। एक व्यक्ति दौड़कर अपनी झंडी दूसरे को देता है, वह तीसरे को। इस प्रकार एक युग के पश्चात दूसरा युग प्रगति की धरोहर को देता रहता है। कालचक्र के अनुसार गतिशीलता इतिहास की विशेषता है। प्रत्येक युग में मनुष्य अतीत से कुछ ग्रहण कर भविष्य को देता है। हिगेल ने काल की गतिशीलता में इसी को समन्वय की प्रक्रिया स्वीकार किया है। इतिहास की प्रगति में व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह चिंतनशील प्राणी है। मनुष्य की रचना शक्ति और उसके कर्म से ही इतिहास की नवीन धाराएं उद्भूत होती रहती है। ऐसे सृजनशील व्यक्तियों द्वारा इतिहास का निर्माण होता है। कर्म का सिद्धांत व्यक्तिवादी है। मोक्ष का सिद्धांत वैयक्तिक प्रगति की अवधारणा का पोषक है। संपूर्ण समाज न तो स्वर्ग और न नरक की परिकल्पना करता है। वैयक्तिक प्रगति से स्वधर्म की पुष्टि होती है। समाज में कुछ भौतिक सुख और अन्य आध्यात्मिक सुख प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। स्वधर्म का प्रतिपादन श्रीमद् भगवद गीता और उत्तरार्ध चरित में किया गया है, परंतु वैयक्तिक प्रयास से प्रगति की अवधारणा की परिकल्पना नहीं की जा सकती। प्रगति का मानदंड समाज होता है। निरंतर प्रगति के लिए सुशासित एवं नियंत्रित समाज की आवश्यकता होती है। सामाजिक सामूहिकता प्रगति के लिए परम आवश्यक है। सामूहिक प्रयास से ही सामाजिक प्रगति संभव है। एकाकी जीवन व्यतीत करने वाले का अनियंत्रित समाज में प्रगति की परिकल्पना व्यर्थ है। ऐसे समाज में सामूहिक प्रयास संभव नहीं है। प्रगति के लिए सुशासित समाज में सामूहिक प्रयास अपरिहार्य होता है। कॉलिंगवुड के अनुसार पशु पक्षियों का भी समाज होता है, परंतु उस समाज में प्रगति संभव नहीं है, क्योंकि प्रगति के लिए चिंतनशील मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। अतः प्रगति का मार्ग चिंतनशील मनुष्य तथा समाज के सहयोग द्वारा प्रशस्त किया जा सकता है। मनुष्य के पास कितना ही चिंतनशील मस्तिष्क क्यों न हो, परंतु सामाजिक सहयोग के अभाव में वह अकेले कुछ नहीं कर सकता। सिंचाई के लिए नहर, यातायात के लिए सड़क, रेल, वायुयान, चंद्रमा के धरातल पर मानव अवतरण सुशासित समाज के सम्मिलित प्रयास द्वारा ही संभव हुआ है। प्रगति अवधारणा संबंधी दो परस्पर विरोधी विचार हैं, जिनका विश्लेषण आवश्यक है। इतिहास प्रगति नहीं। भारतीय तथा यूनानी प्राचीन संस्कृतियों में यह अवधारणा पाई जाती है कि मानव इतिहास पूर्वांकित है। मानव इतिहास एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार अग्रसर होता जा रहा है। इसका लक्ष्य निश्चित है तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति तक की विकास प्रक्रियाओं में आने वाली विशिष्ट अवस्थाएं पूर्वांकित हैं। भारतीय तथा यूनानी इतिहास अवधारणा के अनुसार मानव इतिहास निरंतर पतन का इतिहास है, जिसमें मनुष्य अधिकाधिक दुख तथा नैराश्यपूर्ण स्थिति की ओर निरंतर बढ़ता जा रहा है। अंत में इसे विनष्ट हो जाना है। भारतीय अवधारणा के अनुसार इतिहास की गति युग चक्रीय है। एक युग से दूसरे युग में प्रवेश का तात्पर्य दुख की वृद्धि है। कृत मानव जीवन का स्वर्ण युग, त्रेता मानवीय गुणों तथा सुखमय जीवन का अभाव, द्वापर मानवीय दुख का आरंभ, कलयुग युग चक्र का अंतिम भाग। समाज में कलह तथा पारस्परिक संघर्ष से मानव जीवन अत्यधिक दुखी तथा नैराश्यपूर्ण होता जा रहा है। यूनानी दृष्टिकोण भी युग चक्रवादी है। स्वर्ण युग, रजत युग, कांस्य युग तथा लौह युग निरंतर पतन के सूचक है। भारतीय यूनानी अवधारणा के अनुसार अंतिम युग चक्र के पश्चात सृष्टि के अंत के साथ मानव इतिहास का अंत होता है। इस प्रकार युग चक्रवादी दृष्टिकोण के अनुसार इतिहास प्रगति नहीं अपितु निरंतर पतन का इतिहास है। मानव इतिहास का प्रारंभ सृष्टि के साथ होता है और सृष्टि के अंत में मानव इतिहास का अंत हो जाता है। इस प्रकार इतिहास क्रमशः पतन का इतिहास है। ऐसी परिस्थिति में समाज में प्रगति का अर्थान्वेषण एक महान भूल है। आधुनिक विचारकों में अनेक ऐसे विद्वान हैं जो मानव जीवन के निरंतर विकास को प्रगति का सूचक नहीं मानते। रूसो के अनुसार वैज्ञानिक युग के कारण मनुष्य की स्वतंत्रता में निरंतर गिरावट हुई है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होकर दासता के बंधन में बंधा है। प्रगति का अभिप्राय मानव जीवन के लिए अधिकाधिक स्वतंत्रता की प्राप्ति है। इसलिए रूसी सम्राट निकोलस प्रथम ने प्रगति शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया। रशेल ने भी लिखा है कि आज से एक शताब्दी पूर्व की तुलना में मनुष्य बहुत कम स्वतंत्र है। प्रोफेसर एजे पी टेलर के अनुसार इतिहास में प्रगति का अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि मानवीय सुख सुविधा में निरंतर कमी होती जा रही है। पहले विद्यालयों के प्राध्यापकों के घर में नौकर कपड़ा धोते थे, परंतु आज उन्हें स्वयं कपड़ा धोना पड़ता है। प्रोफेसर अर्नाल्ड ने 1941 में इस तर्क को बढ़ाया। मानव इतिहास का आधुनिक काल इतिहास का अंतिम चरण है, यह समय की संपूर्णता का चिन्ह धारण किए हुए है, इसके बाद आगामी इतिहास नहीं होगा। इस प्रकार का मूल्यांकन सुख सुविधा में कमी के आधार पर किया है। भारतवर्ष में राज्यों के विलय तथा जमींदारी उन्मूलन के पश्चात राज परिवार तथा जमींदारों के परिवार के सदस्य वर्तमान भारतीय प्रगति को पतन की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उनकी सुख सुविधा में कमी आ गई है। इस प्रकार प्रगति का मूल्यांकन मूल्य संपृक्त व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो गया है।
निसंदेह वैज्ञानिक विकास के कारण यूरोप तथा अमेरिका प्रगतिशील माने जाते हैं, परंतु इस प्रगति के साथ मानवीय गुणों, मूल्यों तथा नैतिकता में गिरावट आई है। यही कारण है कि स्पेंगलर ने पाश्चात्य का पतन डिक्लीन ऑफ द वेस्ट नामक पुस्तक में पतन की विशेष चर्चा की है। टैनबी की रचनाओं में सर्वत्र पतन की गति के स्वर दिखाई देते हैं। टैनबी ने स्पष्ट लिखा है कि पश्चिमी जगत पतन की ओर अग्रसर हो रहा है, अतः उसे अपनी रक्षा हेतु प्राचीन सभ्यताओं से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। स्पेंगलर तथा टैनबी के दृष्टिकोण में यथार्थता है। यदि विज्ञान ने मानवीय सुख सुविधाओं की अभिवृद्धि की है, तो साथ ही आणविक तथा न्यूक्लियर अस्त्र शस्त्रों ने मानवीय विनाश की पृष्ठभूमि भी तैयार की है। कार्ल मार्क्स तथा एंजिल ने भी इतिहास की गति में पतन के स्वर को ढूंढा है। मार्क्स के अनुसार इतिहास सभी देवियों से अधिक क्रूर है। वह न केवल युद्ध में बल्कि शांति काल के आर्थिक विकास में अगणित लाशों के ऊपर अपना विजय रथ दौड़ाता चलता है, और हम स्त्री पुरुष दुर्भाग्यवश इतने नासमझ हैं कि जब तक अपने अतिशय कष्टों द्वारा प्रेरित नहीं होते, तब तक वास्तविक प्रगति के लिए कार्य करने का साहस नहीं जुटा पाते। पूंजीवादी व्यवस्था से उबकर मार्क्स ने इस प्रकार की अभिव्यक्ति की है, क्योंकि असंख्य श्रमिकों का शोषण उन्हें सह्य नहीं था। संपूर्ण विश्व में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना में ही उन्होंने प्रगति का स्वप्न देखा था। अतः मार्क्स की दृष्टि में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विकास प्रगति का संकेतक नहीं अपितु पतन का सूचक है। कॉलिंगवुड के अनुसार कला, विज्ञान, नैतिकता तथा दर्शन में प्रगति होती ही नहीं, क्योंकि इनका संबंध स्थान विशेष और व्यक्ति विशेष से होता है। गुप्तकालीन स्वर्णयुग तथा शाहजहां कालीन उत्कर्ष की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, क्योंकि इन युगों की प्रगति को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया। यदि इतिहास समाज की विकासात्मक व्याख्या है, तो गुप्तकालीन एवं शाहजहां कालीन युगों का विकास नहीं हुआ है। इसी प्रकार संस्कृत साहित्य में कालिदास के योगदान को विकसित करना संभव नहीं है, क्योंकि कालिदास के साथ ही उस शैली तथा क्षमता का अंत हो गया। यही कारण है कि ब्रिटेन दूसरे शेक्सपियर को अभी तक जन्म न दे सका। इस प्रकार कला, साहित्य तथा दर्शन में प्रगति संभव नहीं है। कॉलिंगवुड ने पुनः कहा है कि परिवर्तन प्रगति का सूचक नहीं हो सकता। यदि कुछ मनुष्यों की आजीविका मछली है, किंतु कुछ समय पश्चात मछली के अभाव में आजीविका का अन्य साधन अपनाया जाता है, तो इसे परिवर्तन कहेंगे, पर प्रगति कहना एक महान भूल होगी। परंतु मनुष्य एक दिन में 10 मछली पकड़ता है, और नए साधनों के कारण अब वह एक दिन में 50 मछली पकड़ने लगा, तो उसे इसे प्रगति कह सकते हैं। परंतु इस प्रगति का प्रयास मूल्य संपृक्त होता है। कुछ व्यक्ति दिन भर कार्य करना पसंद करेंगे, और कुछ व्यक्ति आधे दिन आराम करना चाहेंगे। आराम पसंद व्यक्ति के लिए 50 मछलियों को पकड़ना प्रगति का सूचक नहीं हो सकता। इतिहास में प्रगति अवधारणा के प्रबल विरोधी कार्ल आर पॉपर हैं। उन्होंने अपनी रचना पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म में इतिहासवाद की दरिद्रता में प्रगति अवधारणा पर कठोरतम प्रहार किया है। यदि ब्रिटिश इतिहासकार बटरफील्ड तथा लॉर्ड एक्टन ने ब्रिटिश साम्राज्य की विकासात्मक प्रक्रिया में एक पक्षीय प्रगति को ढूंढने का प्रयास किया है, तो उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश में रहने वाले स्त्री पुरुष की कठिनाइयों पर भी विचार करना चाहिए था। उपनिवेशवासियों के आर्थिक शोषण ने उनके पतन तथा गुलामी का मार्ग प्रशस्त किया। एक तरफ आर्थिक शोषणों द्वारा ग्रेट ब्रिटेन की प्रगति हुई तो दूसरी ओर उपनिवेशवासियों का आर्थिक संकट निरंतर बढ़ा। इसे कार्लाइल पापर ने इतिहासवाद की दरिद्रता के रूप में देखा। आज विश्व की 5 महाशक्तियां संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस तथा चीन आणविक तथा न्यूक्लियर अस्त्र शस्त्र से संपन्न राष्ट्र बनकर विश्व के अन्य राष्ट्रों के भाग्य निरंतर बन बैठे हैं। अमेरिका द्वारा नागासाकी पर 1945 में अणुबम गिराने के फलस्वरूप बहुसंख्यक लोगों की मृत्यु को विश्व नहीं भूल सका है। महाशक्तियों द्वारा आणविक तथा न्यूक्लियर शस्त्र भंडार सामूहिक विनाश का कारण बन सकता है। मानव समाज का समूह विनाश का संकेतांक कोई भी प्रगति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। इसी प्रकार फ्रांस की 1789, 1830 तथा 1848 राजक्रांतियों में लाखों लोगों की मृत्यु तथा 1905 और 1917 की रूसी क्रांतियों में नरसंहार को कभी प्रगति का सूचक नहीं माना जा सकता। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध तथा 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका लाखों के नरसंहार का कारण बना। कौन इन विभीषिकाओं को प्रगति के रूप में स्वीकार कर सकता है? आज साम्यवादी चीन में प्रजातंत्रवादी समर्थकों का संहार तथा कारागार में उनकी शारीरिक तथा मानसिक यातनाओं को चीन की प्रगति कैसे स्वीकार किया जा सकता है? अतीतकालिक जिन उपलब्धियों का वर्तमान में प्रगति का मापदंड मानते हैं, उसकी पृष्ठभूमि में मानव संहार की विभीषिका पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों का आर्थिक एवं सामाजिक शोषण से अभिषिक्त है। उपरोक्त परिस्थितियों से अत्यधिक क्षुब्ध होकर कार्ल आर पापर ने प्रगति को इतिहासवाद की दरिद्रता माना है। अतः यह स्पष्ट है कि इतिहास में प्रगति की कल्पना एक महान भूल है। इतिहास में प्रगति, अधिकांश विद्वानों का अभिमत है कि मानव इतिहास निरंतर प्रगति का इतिहास है। प्रोफेसर गोविंद चंद पांडे ने स्पष्ट कहा है कि मानव इतिहास निरंतर अकुशल से कुशल की ओर प्रवर्तमान है। यह सही अर्थों में विकासशील है तथा अनवरत रूपेण अधिक न्याय, अधिक सुविधा तथा अधिक सुख की प्राप्ति की ओर उन्मुख है। कोंदोर्से का भी यही अभिमत है। उसने प्रगति की अवधारणा का प्रबल समर्थन करते हुए कहा है कि यूनान में शब्द लेखन ज्ञान से आज तक यूरोपीय प्रबुद्ध राष्ट्रों में मानव इतिहास निरंतर प्रगति श्रृंखला की वृद्धिमान श्रृंखला रहा है। परिणाम स्वरूप मानव मस्तिष्क के प्रयास तथा प्रगति का चित्र निरंतर ऐतिहासिक होता जा रहा है। विद्वान के इस वाक्यांश में यथार्थता है। सृष्टि के प्रारंभ से आधुनिक युग तक यदि मानव समाज के इतिहास का अवलोकन किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रारंभिक एकाकी जीवन से आधुनिक समाज का तुलनात्मक अध्ययन इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि मानव मस्तिष्क के साथ समाज निरंतर प्रगतिशील रहा है। इसलिए लेनपूल ने भी मानव इतिहास को प्रगति की निर्बाध श्रृंखला कहा है। प्रगति अवधारणा 19वीं सदी की देन है। समृद्धिशाली ग्रेट ब्रिटेन 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जब अपनी शक्ति, आत्मबल तथा साम्राज्य विस्तार के उच्च शिखर पर था, उस समय प्रगति अवधारणा ब्रिटिश इतिहासकारों के चिंतन एवं लेखन का विषय बन गई। लॉर्ड एक्टन ने कैम्ब्रिज मॉडर्न हिस्ट्री की योजना पर अपनी रिपोर्ट में इतिहास को एक प्रगतिशील विज्ञान कहा था। ब्रिटिश इतिहासकारों पर प्रगति शब्द का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा था कि 1920 में प्रोफेसर जेबी ब्यूरी ने आइडिया ऑफ प्रोग्रेस पुस्तक की रचना द्वारा प्रगति अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके पश्चात तो प्रगति अवधारणा इतिहासकारों के चिंतन एवं लेखन का विषय बन गई। प्रोफेसर ईएच कार के अनुसार पृथ्वी पर मानव इतिहास की पूर्णता के लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयास को प्रगति का इतिहास माना गया है। गिबन ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि यह एक सुखद निष्कर्ष है कि विश्व के प्रत्येक वैशिष्ट ने मानव के वास्तविक ऐश्वर्य, प्रसन्नता और ज्ञान संबंधी गुणों में वृद्धि की है।
यही नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील भी है। प्रगति में अटूट आस्थावान विद्वान कोंदेसे ने स्पष्ट कहा है कि निस्संदेह प्रगति की गति का स्वरूप एक समान नहीं रहा है। फिर जब तक सृष्टि के प्रगति का प्रवाह कभी विपरीत नहीं हो सकता। इसके कथन का प्रमुख अभिप्राय यह है कि मानव इतिहास निरंतर एवं निबाध रूप से प्रगतिशील है और सृष्टि के अंत तक प्रगतिशील बना रहेगा। कॉलिंगवुड के अनुसार मानवीय स्वभाव एवं कार्य प्राकृतिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य अपने प्रत्येक कार्य पूर्ववर्ती कार्य में सुधार तथा प्रगति का सूचक माना जाता है। चंद्रमा के धरातल पर मानव अवतरण अनेक प्रयासों का परिणाम रहा है। प्रथम प्रयास के पश्चात दूसरा, तीसरा तथा चौथा प्रयास निरंतर प्रगति का संकेतक रहा है। अंतिम प्रयास में वैज्ञानिकों को चंद्रमा के धरातल पर माना मानव अवतरण में सफलता मिली है। इस प्रकार प्रगति का अभिप्राय क्रमानुसार सुधार तथा परिवर्तन है। अ ब स द में ब अ की परिस्थिति में सुधार का संकेत करता है। इसी प्रकार स ब की परिस्थिति तथा द स की परिस्थिति में सुधार तथा प्रगति का सूचक माना जाता है। ऐतिहासिक प्रगति का तात्पर्य मानवीय प्रक्रिया से है। मनुष्य अपने प्रत्येक कार्य में कुछ समस्याओं का समाधान करता है। उसका दूसरा प्रयास समस्या के समाधान के लिए होता है। इस प्रकार समस्या के समाधान के प्रयास में निरंतरता होती है। इसी निरंतरता को प्रगति कहते हैं। प्रगति के लिए निरंतरता आवश्यक तथ्य होती है। कॉलिंगवुड के अनुसार सभी इतिहास विचार प्रधान होते हैं। विचार की प्रगति इतिहास के मध्य ही संभव है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने न्यूटन के विचार तत्व को अपने मस्तिष्क में समाहित कर आगे बढ़ाया तो इसे प्रगति कहा जा सकता है। इस प्रकार न्यूटन का विचार आइंस्टीन के मस्तिष्क में सजीव रहा है। आइंस्टीन ने न्यूटन के विचार तत्व की पुनरानुभूति करके उसे आगे बढ़ाया। इस प्रकार कॉलिंगवुड के अनुसार प्रगति का अभिप्राय ऐतिहासिक ज्ञान का प्रयास है जिसे प्रगति की संज्ञा दी जा सकती है। महान दार्शनिक हीगल ने प्रगति तथा विकास को अपने ढंग से परिभाषित किया। प्रगति मानवीय समाज की होती है, प्रकृति की नहीं। इसी प्रकार इतिहास प्रगतिशील है क्योंकि मानवीय समाज तथा प्रक्रियाओं के परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति प्रगतिशील नहीं है क्योंकि पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्र की स्थिति आज भी वही है जैसी अतीत में थी। प्रगति संबंधी अवधारणा में हीगल ने दो प्रमुख तत्वों पर विशेष जोर दिया है। एक, ऐतिहासिक प्रक्रिया की विशेषता प्रगतिशीलता में है। दो, इस प्रगतिशीलता को समझने के लिए मानवीय विचारों की भूमिका को समझना अत्यंत आवश्यक है। हीगल ने जिस समय विकास तत्व पर जोर दिया था उस समय प्राणी विकास के सिद्धांत से अज्ञात था। डार्विन के क्रांतिकारी विचारों ने विकास और प्रगति का समीकरण बनाकर सारी परेशानी समाप्त कर दी और अंततः इतिहास की तरह प्रकृति भी प्रगतिशील प्रमाणित की गई है। हर्डर की अवधारणा है कि इतिहास प्रगतिशील है। इतिहास की प्रगति के अंतर्गत वह विकास प्रक्रिया को मान्यता देता है। विकास की प्रत्येक अवस्था प्रकृति द्वारा इस प्रकार नियोजित है कि वह आगामी अवस्था का मार्ग प्रशस्त कर सके। कोई भी अवस्था स्वयं में लक्ष्य नहीं है किंतु मनुष्य के आविर्भाव में यह प्रक्रिया अपनी परिणति को पहुंचती है। प्रकृति तर्क तथा बुद्धिजन्य प्राणी को जन्म देती है जिसका पूर्ण विकास भविष्य में स्थित होता है। इस प्रकार मनुष्य दो विश्वों के बीच श्रृंखला के रूप में है। भौतिक जगत जिससे वह स्वयं निकलता है तथा आध्यात्मिक जगत जो वस्तुतः उसके द्वारा अस्तित्व में नहीं आता किंतु पृथ्वी आत्म सिद्ध करती है। इस अवधारणा से यह सिद्ध होता है कि इतिहास की भांति प्रकृति भी प्रगतिशील है। इसका एकमात्र श्रेय जैविक विज्ञान के महान दार्शनिक विचारक डार्विन को है। जैविक वंशगति विकास स्रोत के रूप में प्रकृति का स्रोत माना गया है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्राप्त दक्षताओं के संप्रेषण द्वारा प्रकृति ही इतिहास है। अनेक इतिहासकारों ने हीगेल की इस अवधारणा का खंडन किया है, जिसके माध्यम से वह प्रशा के राजतंत्र में प्रगति का अंत देखना चाहता है। कार्ल मार्क्स का भी विश्वास इतिहास की प्रगतिशीलता में था। उनके अनुसार समाज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। दास प्रथा का अंत तथा मानव स्वतंत्रता इस तथ्य की पुष्टि करता है। मार्क्स की प्रगति संबंधी अवधारणा इस भविष्यवाणी में प्रस्फुटित हुई कि सर्वहारा क्रांति से वर्गहीन समाज का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना संभव होगा। E.H. कार ने नैतिक तथा तार्किक स्तर पर इसे स्वीकार किया है। लॉर्ड एक्टन के अनुसार इतिहास प्रगति का आलेख मात्र नहीं अपितु एक प्रगतिशील विज्ञान है। प्रगति प्रक्रिया में कुछ काल प्रगति के होते हैं और कुछ प्रतिक्रिया के पश्चात गति के। मुगल सम्राट अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां का काल प्रगति का अध्याय है। औरंगजेब के शासन काल को प्रतिक्रिया तथा पतन का युग माना जाता है। सार्वभौमिक नियम के अनुसार उत्थान तथा पतन होता है, परंतु प्रगति के संबंध में इस अवधारणा का क्रियान्वयन संभव नहीं है। प्रगति में अवरोध संभव है, परंतु यह स्वीकार करना गलत होगा कि एक बार पीछे हटने के पश्चात उसी बिंदु या उसी मार्ग से प्रगति पुनः आरंभ होती है। किसी वंश अथवा राज्य के पतन के पश्चात प्रगति की गति अवरुद्ध हो जाती है। दूसरे वंश अथवा राज्य के उत्थान के पश्चात अवरुद्ध प्रगति पुनः सक्रिय होकर विकास की ओर प्रयाण करती है। तानवी द्वारा 21 सभ्यताओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जन्म, उत्थान, पतन और ध्वंस की चक्रीय प्रक्रिया के पश्चात सभ्यता को गतिशील करने वाली शक्ति एक स्थान पर समाप्त होकर दूसरे स्थान पर पुनः सक्रिय होती है। इसी प्रकार वंश अथवा राज्य के पतन के पश्चात प्रगति को गतिशील बनाने वाली शक्ति दूसरे वंश में स्वयमेव प्रतिस्थापित हो जाती है, परंतु प्रगति की क्रियाशील शक्ति का अंत नहीं होता है। कुछ लोग नागरिक अधिकारिकों की प्राप्ति रंगभेद अथवा असमानता के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। रहस्यवादी तथा आध्यात्मवादी भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी पर पूर्णता की प्राप्ति असंभव है। प्रत्येक समाज अपनी वर्तमान पीढ़ी पर आने वाली पीढ़ी के निमित्त त्याग और बलिदान करने का दायित्व आरोपित करता है। झांसी की रानी, भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान भावी पीढ़ी के प्रति कर्तव्य के सिद्धांत प्रगति अवधारणा का स्वाभाविक परिणाम है। हीगेल ने इतिहास की गति को भविष्य में प्रक्षेपित करने के बजाय वर्तमान में समाप्त कर सबसे बड़ी भूल की है। उसने अतीत में अनवरत विकास की प्रक्रिया को पहचाना, परंतु भविष्य में उस प्रगति प्रक्रिया को अस्वीकार कर दिया। मार्क्स अपने सिद्धांतों को अतीत पर दृढ़ता से आधारित रखना चाहते थे, परंतु विषय वस्तु के स्वरूप में इस बात के लिए बाध्य हुए कि वर्गहीन समाज को अपने पूर्ण सत्य की प्राप्ति को भविष्य में प्रक्षेपित करना चाहिए। भविष्य के प्रति आस्थावान होने के कारण ही उन्होंने कहा था कि अंत में पूंजीवादी व्यवस्था की समाप्ति के पश्चात साम्यवादी व्यवस्था ही रह जाएगी। प्रोफेसर जेबी ब्यूरी ने भी भविष्य के प्रति अपनी आस्था की अभिव्यक्ति की है। उन्होंने कहा है कि प्रगति अवधारणा के सिद्धांत में अतीत और भविष्य की कल्पना का समन्वय होता है। एल्वी नेमियर के शब्दों में, इतिहासकार अतीत की कल्पना और भविष्य का स्मरण करता है। अन्य इतिहासकारों ने भी अतीत और भविष्य के संश्लिष्ट स्वरूप को देखने का प्रयास किया। टोकविले के अनुसार, अगर हमारे समकालीन मानवों को समानता के क्रमिक और प्रगतिशील विकास का उनके अतीत और भविष्य के इतिहास के रूप में दर्शन कराया जा सकता है तो यह उनके स्वामी की इच्छा का पवित्र परिचय देता है। प्रगति अवधारणा की व्याख्या में भविष्य ही अतीत की व्याख्या का यंत्र प्रदान कर सकता है। अतीत का भविष्य पर प्रकाश तथा भविष्य का अतीत पर प्रकाश डालना स्वाभाविक है। जब इतिहासकार प्रगति के क्रम को अतीत में ढूंढता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उस गति का क्रम वर्तमान और भविष्य में ही रहेगा। कोंदोर्से ने भी प्रगति अवधारणा में अतीत, वर्तमान और भविष्य को श्रृंखला की मान्यता प्रदान की है। सभी व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र का प्रयास मानव प्रगति के लिए होता है। भविष्य के प्रति आस्था मनुष्य को प्रगति के लिए विवश तथा बाध्य करती है। E.H. कार के अनुसार यदि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत परिसंवाद है तो इसे अतीत की घटनाओं और उभरते हुए भावी परिणामों के बीच अनवरत परिसंवाद की संज्ञा दी जा सकती है। प्रगति संबंधी इतिहास के अध्ययन में इन श्रृंखलाओं अतीत वर्तमान भविष्य की अपेक्षा एक महान भूल होगी। इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य अतीत तथा भविष्य के बीच एक सेतु का निर्माण करना है। इतिहास का यह सेतु अतीत वर्तमान तथा भविष्य के बीच अन्योन्याश्रित संबंध स्थापना में सहायक होता है। गेटे का भी अभिमत है कि जब कोई युग परिवर्तनशील होता है तो सभी प्रवृत्तियां आत्मगत हो जाती हैं। इसके विपरीत जब नवीन युग का आरंभ होता है तो परिपक्व परिस्थितियों की सभी प्रवृत्तियां पुनः सक्रिय एवं क्रियाशील होकर प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करती हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास में प्रगति की शक्तियां अंतर्निहित रहती हैं। इनका कभी अंत नहीं होता। प्रगति की अंतर्निहित शक्तियों का समय समय पर उभार होता रहता है। इतिहास के मध्य यह प्रगति की शाश्वत प्रक्रिया अनवरत क्रियाशील रहती है। इतिहास में प्रगति का तात्पर्य सफलताओं तथा उपलब्धियों मात्र से नहीं होना चाहिए। कॉलिंगवुड ने स्पष्ट लिखा है कि प्रचुर साक्ष्यों के कारण इतिहासकार किसी युग को स्थान काल तथा किसी युग को पतन काल मान लेता है, परंतु प्रगति अवधारणा के अंतर्गत उत्थान तथा पतन उपहासास्पद प्रतीत होता है। गिबन ने अपने इतिहास में इस्लाम की विजय को अत्यधिक महत्व दिया है। उनकी दृष्टि में अभी भी पूर्वी विश्व के नागरिक और धार्मिक ध्वज मोहम्मद के शिष्यों के हाथ में है। इस प्रकार उन्होंने इतिहास को सफलताओं की कथा स्वीकार किया है, परंतु इतिहासकारों को विरोधी शक्तियों को तुच्छ नहीं आंकना चाहिए। इतिहास में दोनों शक्तियों को समान स्थान मिलना चाहिए। कार्लाइल ने अपनी पुस्तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लुई 16वें को विश्व संस्कारहीनता का अवतार कहा है। उसने पुनः लिखा है कि संस्थाओं, समाज व्यवस्थाओं, व्यक्ति मस्तिष्कों का यह कैसा विश्वव्यापी चक्करदार आंदोलन है कि जो एक समय सहयोग कर रहे थे अब हतबुद्धि कर देने वाले चक्करों में घुमड़ घुमड़ कर पीस रहे हैं। अंत में सड़ी हुई विश्व संस्कारहीनता टूटकर बिखर रही है। प्रगति अवधारणा के अंतर्गत किसी को संस्कारहीनता जैसे शब्द से संबोधित करना उचित नहीं है। प्रगति की गति में लुई 16वां बाधक हो सकता था, परंतु उसके चरित्र और कार्यों के कारण प्रगति की अंतर्निहित शक्ति लुप्त नहीं हो सकती है। सर इसाइया बर्लिन ने अपने लेख ऐतिहासिक असंभाविता हिस्टोरिकल इनविटिबिलिटी में बिस्मार्क की प्रशंसा की है कि नैतिक दुर्बलताओं के बावजूद वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ था। राजनीतिक निर्णय लेने की श्रेष्ठतम दक्षता रखने वाले गत शताब्दी के राजनेताओं में सर्वश्रेष्ठ था। राजनीतिज्ञ का कार्य यह देखना मात्र नहीं है कि नैतिक या सैद्धांतिक रूप से क्या वांछनीय है, बल्कि उन शक्तियों को ध्यान में रखना है जो विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति में कार्यरत रहती है। दक्षिणी अफ्रीका के उपनिवेश नैम्बिया की स्वतंत्रता निश्चित है। विलंब भले ही हो सकता है, परंतु इतिहास की गति विपरीत नहीं हो सकती है। निसंदेह आज की सफलताएं कल की उपलब्धियों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। इतिहासकार वर्तमान कालिक मूल्यों के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करके उसे प्रगति सूचक अथवा विरोधी स्वीकार करता है। इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य शब्द कर्तव्य तथ्य तथा उसकी व्याख्या के बीच एवं तथ्य तथा मूल्य के बीच संतुलन स्थापित करना है। वस्तुतः इतिहास परिवर्तन गति और प्रगति में निहित है। एक्टन के अनुसार प्रगति वह वैज्ञानिक अवधारणा है जिसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। ऐसा समाज जो भविष्य की दिशा और प्रगति अपने प्रगति करने की क्षमता खो चुका है शीघ्र ही अतीतकालिक प्रगति में रुचि लेना समाप्त कर देगा। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं जब वर्तमान कालिक मनुष्य अपनी क्षमता में विश्वास खोने के बाद प्रगति की गति को नवीन शक्ति और चेतना प्रदान करने के लिए अतीत की ओर दृष्टिपात करता है। यूरोप में पुनर्जागरण काल का उदय यूनान तथा रोमन इतिहास के अध्ययन का परिणाम रहा है। संपूर्ण शक्ति खोने के पश्चात यूरोप वासियों के हृदय में एक बार पुनः चेतना और शक्ति का संचार अतीत ने प्रदान किया। राष्ट्रीय आंदोलन के समय भारतीय नेताओं ने स्वतंत्रता की प्रेरणा महाराणा प्रताप, शिवाजी तथा रानी लक्ष्मीबाई से प्राप्त की। आज भी महात्मा गांधी का राम राज्य का स्वप्न भारतीय समाज की प्रगति का सूचक, नवीन शक्ति एवं प्रेरणा का स्रोत रहा है। अतीत में सदैव वर्तमान को प्रकाशित तथा भविष्य का मार्गदर्शन किया है। E.H. कार ने तो स्पष्ट लिखा है कि इतिहास में हमारा दृष्टिकोण हमारे अतीतकालिक सामाजिक दृष्टिकोण को सदैव प्रतिबिंबित करता रहा है। उन्होंने अटूट विश्वास की अभिव्यक्ति समाज तथा इतिहास के भविष्य में की है। समाज तथा इतिहास के भविष्य में अटूट आस्था का अभिप्राय प्रगति सूचक है। भारतीय मनीषियों, विचारकों तथा दार्शनिकों ने प्रगति अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रोफेसर LP पांडे ने अपनी पुस्तक भारतीय इतिहास दर्शन में इस विषय पर व्यापक चर्चा की है। इस विषय पर सर यदुनाथ सरकार, DD कौशाम्बी, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी, हुमायूं कबीर तथा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार स्पष्ट तथा स्तुत्य हैं। सर यदुनाथ सरकार अर्थव्यवस्था, कला के तथा विज्ञान के विकास को, राष्ट्र विकास, एकता तथा सुरक्षा को राष्ट्र प्रगति का मानक मानते हैं। वे राष्ट्र की प्रगति के लिए आदर्श विचारों तथा आपसी मतभेदों को भुलाकर हिंदू मुस्लिम समन्वयवाद के प्रबल पक्षधर थे। प्रगति अवधारणा के संबंध में प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी का दृष्टिकोण सारगर्भित, व्यापक और सार्वभौमिक है। उनकी मान्यता है कि प्रगति का मूल आधार मानवता तथा सभ्यता है। महान योद्धाओं, सम्राटों तथा राजनयिकों की उपेक्षा न करते हुए समाज में जन्मे महान ऋषियों, सामाजिक अभियंताओं, समाज चिंतकों, दार्शनिकों तथा धर्म प्रवर्तकों को सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति का प्रेरक तथा निर्माता स्वीकार करते हैं। प्रोफेसर मुखर्जी का अभिमत है कि दीर्घकालीन भारतीय इतिहास में पुनर्जागरण काल की पुनरावृत्ति अनेक बार हुई। अर्नाल्ड जे टायनवी की भांति उनका भी दृष्टिकोण है कि यह पुनर्जागरण केंद्र भारत के विभिन्न भागों में स्वयमेव स्थानांतरित होता रहा है। प्रथम पुनर्जागरण काल का अभ्युदय 6वीं सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ईसा पूर्व में बौद्धिक एवं धार्मिक क्रांति के रूप में विद्यमान थी। द्वितीय पुनर्जागरण काल में प्रथम शताब्दी से 1000 ईस्वी तक भागवत धर्म तथा महायान बौद्ध धर्म का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। गुप्तकालीन कला, साहित्य, संस्कृति की प्रगति के साथ ब्राह्मण धर्म के अभ्युदय को तृतीय पुनर्जागरण काल मानते हैं। गुप्तकाल के पश्चात तांत्रिक नवजागरण का युग था। इसके बाद पालो तथा सेन सम्राटों के समय बौद्ध तांत्रिक नवजागरण के युग का प्रादुर्भाव हुआ। यह 11वीं सदी तक विद्यमान रहा है। इसी प्रकार दक्षिण भारत में पल्लवों, चालुक्यों तथा चोलों के समय कला, साहित्य तथा संस्कृति का उत्थान एक नवीन पुनर्जागरण का द्योतक माना जाता है। इसी क्रम में विजयनगर साम्राज्य में ललित कलाओं तथा साहित्य का विकास नवीन पुनर्जागरण का संकेतक है। भारत में मुस्लिम शासन की व्यवस्था ने भारतीय समाज सुधारकों तथा चिंतकों के हृदय को आंदोलित कर मुस्लिम आक्रमणकारियों तथा उनकी विजयों और भारत में मुस्लिम शासन के विश्लेषण के लिए न केवल विवश कर दिया, अपितु हिंदुओं की खोई हुई शक्ति की पुनर्प्राप्ति के चिंतन के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित भी किया। इस प्रकार का अथक प्रयास एक नवीन पुनर्जागरण के उद्भव का कारण बना। इस पुनर्जागरण का नेतृत्व महान समाज सुधारक तथा भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानंद ने किया। नवचेतना संबंधी इस ज्योति को कवि, नानक, चैतन्य तथा संत रविदास ने बढ़ाकर समाज को प्रकाशित तथा आंदोलित करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। 14वीं सदी से 18वीं सदी तक संपूर्ण महाराष्ट्र, कामरूप, बंगाल, पंजाब तथा गुजरात में एक नवीन चेतना जागृत हुई। भारतीय संस्कृति के इतिहास में मुगल काल भी एक नवजागरण माना जाता है। इस काल में स्थापत्य कला, ललित कला, चित्रकला, फारसी तथा हिंदी साहित्य का अभूतपूर्व विकास और सांस्कृतिक प्रगति हुई। भक्ति आंदोलन के सामाजिक सुधारकों तथा सूफी संतों के समन्वयवादी विचारों से प्रेरित होकर सम्राट अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां ने सिंचित कर एक विशाल सांस्कृतिक वटवृक्ष की रचना की, जिसकी छाया ने हिंदू मुस्लिम समुदायों को आनंदित किया। आज प्रत्येक भारतीय उस नवजागरण की उपलब्धियों पर गर्व की अनुभूति करता है। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से पुनः राजा राम मोहन राय जैसे समाज तथा धर्म सुधारक को सामाजिक कुरीतियों तथा समाज सुधार के संबंध में चिंतन के लिए प्रेरित तथा विवश कर दिया। 19वीं सदी नवजागरण का केंद्र बंगाल बना। राजा राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती के अथक प्रयास ने समाज सुधार आंदोलन को नवीन शक्ति तथा स्फूर्ति प्रदान की। इस प्रकार भारतीय इतिहास में एक के बाद दूसरा पुनर्जागरण निरंतर प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता रहा है। यह सच है कि प्रगति के संबंध में प्रतिपादित दर्शन इतिहासकारों के वैयक्तिक चिंतन का परिणाम है। आदर्श की प्राप्ति भारतीय समाज का लक्ष्य रहा है। डीडी कौशाम्बी का अभिमत है कि उत्पादन उपकरणों के आविर्भाव तथा उनमें निरंतर परिवर्तन और उत्पादन से प्रगति होती है। कौशाम्बी ने वैचारिक पक्ष की उपेक्षा तो नहीं की है, परंतु समाज में विद्यमान भौतिकवादी अंतर्द्वंद को सर्वाधिक महत्व दिया है। इस प्रकार अर्थ जनित संघर्ष और विकास उनकी दृष्टि में इतिहास की प्रगति का कारण और साधन है। यदि सभ्यता, कला तथा संस्कृति को प्रगति का आधार स्वीकार किया जाए तो भारतीय संस्कृति प्रगति में शक, हूण, इस्लाम धर्म के अनुयायी, मुसलमानों, पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों, अंग्रेजों का सर्वाधिक योगदान रहा है। प्रायतः भारतीय संस्कृति की प्रशंसनीय विशेषता रही है। विभिन्न छोटी छोटी नदियों की भांति भारतीय संस्कृति की गंगा में मिलकर उसके स्वरूप को विस्तृत तथा विशाल बना दिया है, जिस पर धर्म, जाति तथा क्षेत्रवादी भावनाओं से ऊपर उठकर प्रत्येक भारतीय गर्व की अनुभूति करता है। हुमायूं कबीर का अभिमत है कि मैं बिना वैयक्तिक मूल्यों को दबाए भारतीय इतिहास में अकबर जैसे महान सम्राट ने पारस्परिक मतभेदों को समाप्त करने का सराहनीय प्रयास किया है। उसका एकमात्र लक्ष्य धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मतभेदों को समाप्त करके संपूर्ण प्रजा को एकता के सूत्र में बांधना था। सभी के सहयोग से एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जाए जिस पर सभी भारतीय गर्व की अनुभूति कर सके। राष्ट्रीय एकात्मकता की आवश्यकता है। इसी से हम अक्षुण प्राचीन भारतीय मान्यताओं तथा परंपराओं की रक्षा करते हुए एक नवीन भारत को जन्म दे सकते हैं। हुमायूं कबीर ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि प्राचीन परंपराओं, संस्कृतियों तथा अतीत के खंडहरों से भावी पीढ़ी स्वाभिमान तथा आनंद की अनुभूति तभी करेगा जब हम अपने धरोहर की रक्षा विवेक तथा तर्क से करते हैं। इसके लिए आधुनिक शिक्षा की एकमात्र साधन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रगति संबंधी अवधारणा में मानव जिज्ञासा, धर्म चिंतन की अपरिहार्यता के साथ साथ विज्ञान की अन्वेषणात्मक उपलब्धियों की उपादेयता को स्वीकार किया है। युगों युगों से अन्वेषित सामाजिक संस्थाओं एवं सांस्कृतिक मूल्यों में अटूट आस्थावान होते हुए भी उनमें निहित रूढ़िवादिता के कट्टर विरोधी थे। वे वर्तमान के ज्ञान के लिए अतीत की यात्रा करते हैं, अतीत को वर्तमान की जननी स्वीकार करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी अतीत को वर्तमान के रूप में पुनर्जन्म स्वीकार किया है। उनका अभिमत है कि मानव मस्तिष्क पूर्व विचारों के अभाव में नवीन विचारों को जन्म नहीं दे सकता है। इतिहास की इस निरंतरता को ही वे प्रगति का सूचक स्वीकार करते हैं। जीवन अतीत के अभाव में वर्तमान का एक भी कदम संभव नहीं है। इस प्रकार अतीत का पुनर्जन्म होता रहता है। पंडित नेहरू ने मानव प्रगति के लिए विज्ञान की उपादेयता को स्वीकार किया है, परंतु विज्ञान की प्रगति के दुष्परिणामों से भी अवगत थे। हिरोशिमा तथा नागासाकी पर अमेरिका द्वारा अणुबम का प्रयोग लाखों मनुष्यों की मृत्यु का कारण बना। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मानव प्रगति के इतिहास में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, परंतु विश्व में अशांति तथा युद्ध की विभीषिका के लिए भी उनकी निर्णायक भूमिका को कैसे भुलाया जा सकता है। इसलिए शांति के पुजारी पंडित नेहरू ने शांति, सहयोग, सह अस्तित्व को मानव प्रगति का नवीन आयाम प्रस्तुत किया है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। उपरोक्त विवरण से दो स्पष्ट अवधारणाएं स्पष्ट होती है कि इतिहास निरंतर पतन तथा अवनति का इतिहास है तथा इतिहास गति अक्षुण प्रगति का इतिहास है। अधिकांश विद्वानों ने आर्थिक प्रगति के साथ साथ कला संस्कृति को प्रगति का संकेतांक माना है, परंतु कॉलिंगवुड ने साहित्य और संस्कृति में प्रगति की अवधारणा को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है। यदि साहित्य में प्रगति होती तो समय बीतने के साथ अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर तथा संस्कृत साहित्य ने कालिदास से भी उच्च कोटि के विद्वान को जन्म दिया होता। यही नहीं, गुप्तकालीन तथा शाहजहां कालीन स्वर्ण युग की परिष्कृत रूप में अनेक बार पुनरावृत्ति हुई होती। अतः कला, साहित्य तथा संस्कृति के क्षेत्र में प्रगति का अन्वेषण एक महान भूल है। समाज के विकासात्मक व्याख्या ही प्रगति का सूचक है। समाज पशु पक्षियों का भी होता है, परंतु उस समाज में प्रगति नहीं होती। इसी प्रकार प्रकृति में प्रगति नहीं होती है। आदिकाल से वर्तमान तक इतिहास मानव की सामाजिक प्रगति का साक्षी है। मानव की निर्णायक भूमिका के परिणाम स्वरूप प्रगति की नदी का प्रवाह कभी भी विपरीत दिशा में प्रवाहित नहीं होगा। सामाजिक प्रगति में विज्ञान की निर्णायक भूमिका को सभी विद्वानों ने एक स्वर से स्वीकार किया है, परंतु मानव के संपूर्ण विनाश, विश्व अशांति, युद्ध की विभीषिकाओं को कैसे भुलाया जा सकता है। सब कुछ अवरोधों के बावजूद हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि जब तक इतिहास गतिशील रहेगा तब तक प्रगति की निरंतरता अक्षुण रहेगी। कोंदोर्से का अटूट विश्वास प्रगति के शाश्वत रूप में था। इस महान दार्शनिक के अनुसार प्रगति की गति में अवरोध, आरोह, अवरोह हो सकता है, परंतु ब्रह्मांड में जब तक पृथ्वी का अस्तित्व रहेगा प्रगति की गति विपरीत दिशा में प्रवाहित नहीं होगी। पर्वतीय नदियों का प्रवाह सदैव समुद्र की ओर उन्मुख रहता है। जब तक पृथ्वी का अस्तित्व बना रहेगा नदियों का प्रवाह कभी पर्वतोन्मुख नहीं होगा, क्योंकि यह गति प्रकृति जन्य है। ठीक इसी प्रकार साहित्य में प्रगति की गति आरोह, अवरोह तथा अनेक विभिन्नताओं के बावजूद भी प्रगति का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। इस प्रकार प्रगति का स्वरूप निरंतर गतिशील तथा शाश्वत है।